जानवी एक नज़र आस्तिक को देखती है और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, जी भाई साहब, अभी बुलाकर लाती हूँ। जानवी के जाने के बाद आस्तिक अरुणिमा को देखता है, लेकिन अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखा था। जानवी और पृथ्वी दोनों हॉल में आते हैं। पृथ्वी आस्तिक से कहता है, भाई आपने बुलाया, मुझे कुछ काम था क्या? आस्तिक एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहता है, साइन करो। पृथ्वी हैरान हो जाता है, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आस्तिक किस पेपर पर उसके सिग्नेचर चाहता है। वो हैरानी से उस फाइल को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है, पर जैसे ही उसकी नज़र पेपर पर लिखे शब्दों पर जाती है, वो हैरानी से आस्तिक को देखकर कहता है, ये क्या है भाई, आप मुझे और जानवी को दिल्ली भेज रहे हैं? लेकिन क्यों, आप हम दोनों को दिल्ली क्यों भेज रहे हैं? पृथ्वी की बात पर जानवी और अरुणिमा भी हैरानी से आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक अपने ठंडा एक्सप्रेशन के साथ पृथ्वी को देखकर कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम और जानवी यहाँ से चले जाओ। आस्तिक की बात पर उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और वो हैरान भाव से आस्तिक को देखने लगते हैं। आस्तिक जल्दी से अपने भाव बदलता है और कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में मैंने एक नया हॉस्पिटल ओपन किया है, जहाँ पर गरीब और लाचार लोगों की मुफ्त सेवा की जाएगी, और ये हॉस्पिटल मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है। इसके लिए तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है, और जब तुम दिल्ली में रहोगे तो जानवी भी तो तुम्हारे साथ ही रहेगी। फिर आस्तिक जानवी को देखकर कहता है, जानवी जाओ जल्दी जाकर पैकिंग कर लो, आज शाम की फ़्लाइट है तुम दोनों की। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। जानवी ने जल्दी से कहा, भाई साहब आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? भाभी को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हम उन्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे ऐसी हालत में? वो अकेली यहाँ पर कैसे रह सकती हैं? आस्तिक ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और पृथ्वी को घूर कर देख कर कहा, मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं है कि तुम्हें जाना है या नहीं, बस अपना फ़ैसला सुनाया है। कल हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, इसके लिए तुम लोगों को आज रात ही यहाँ से निकलना होगा, चुपचाप जाकर पैकिंग कर लो। ये कहने के बाद आस्तिक वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद सबके चेहरे पर हताशा नज़र आ रही थी, क्योंकि सबको पता चल रहा था कि आस्तिक किसी शौक से जानवी और पृथ्वी को दिल्ली नहीं भेज रहा था, बल्कि वो तो उन दोनों को अरुणिमा से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उन्हें दिल्ली भेज रहा था। जानवी जल्दी से अरुणिमा के पास आती है और कहती है, भाभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। लेकिन अरुणिमा ने जानवी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं जानवी, तुम पृथ्वी के साथ जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। शाम के वक्त जानवी और पृथ्वी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ना चाहते हुए भी दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि ये आस्तिक का ऑर्डर था। रात के वक्त अरुणिमा अपने कमरे में थी। वो आराम से एक हाथ से अपने पेट को पकड़कर दूसरे हाथ से अपने कपड़े को अलमारी में सेट कर रही थी। भले ही ये एक महीना ही हुआ था, लेकिन अरुणिमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी आस्तिक कमरे में दाखिल होता है और अरुणिमा से कहता है, अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके, तो अब किसके दम पर तुम ये चैलेंज जीतोगी? अरुणिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो पलटकर आस्तिक को देखकर कहती है, चैलेंज करने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि इस जंग में कोई मेरे साथ होगा या नहीं होगा, मैंने अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे कदमों से अरुणिमा के पास आने लगता है। वो अरुणिमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी एक नज़र अरुणिमा के पेट पर देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो आ रहा है रानी साहिबा, लेकिन इसके साथ तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा तीखी हो गई है। आस्तिक अपना एक हाथ अरुणिमा के पेट पर रखता है। अरुणिमा के पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आस्तिक खतरनाक ढंग से अरुणिमा के पेट को देखते हुए कहता है, तुम्हें एक बहुत अच्छी और आज्ञाकारी माँ मिलने वाली है बच्चे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारी माँ के जैसा कभी नहीं बनने दूंगा, बल्कि तुम हमेशा अपने बाप पर ही जाओगे। पर अरुणिमा अगले ही पल आस्तिक का हाथ अपने पेट से झटक देती है और गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे बच्चे को अपने जैसा बनाने का सोचा भी तो। आस्तिक के चेहरे की वो खतरनाक मुस्कान और ज्यादा गहरी हो जाती है। उसने झटके से अरुणिमा के बालों को पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया, लेकिन अरुणिमा भी अपने गुस्से भरी आंखों से आस्तिक की आंखों में देख रही थी। आस्तिक एक डेविल और हस्की वॉइस में कहता है, सच बताऊं तो इस समय तुम पर प्यार और गुस्सा दोनों आ रहा है रानी साहिबा। तुम्हारे चेहरे पर ये जो ग्लो है ना, वो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, पर ये जो तुम्हारी जुबान है, मन करता है इन्हें काट दूं, पर फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो क्यों ना तुम्हारी खूबसूरती का ही मजा लिया जाए। आस्तिक की नज़र अरुणिमा की खूबसूरत होठों पर गई है, जो गुस्से में इस समय फड़फड़ा रहे थे। उसके चेरी रेड होठों को देखकर आस्तिक का मन उन्हें चेरी की तरह मसलने को कर रहा था, और अगले ही पल आस्तिक ने अपना कंट्रोल खो दिया और अपने होठ अरुणिमा के होठों पर रख दिए। अरुणिमा छटपटा रही थी, वो आस्तिक के सीने पर जोर से मारते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी, पर जितना अरुणिमा वाइल्ड हो रही थी उतना ही आस्तिक को मजा आ रहा था। आस्तिक धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था और अरुणिमा उसकी हरकतें जान रही थी। इतना समय हो गया था उसे आस्तिक के साथ रहते हुए, इतना तो वो उसे समझ ही गई थी। उसने आस्तिक को जोर से धक्का देते हुए खुद से अलग किया और उसे रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। आस्तिक सच में बेकाबू हो गया था। उसने कस के टेबल से एक फ्लावर वास उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। क्योंकि वो इस समय सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो जल्दी से वहां से निकल गया, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और अरुणिमा के सामने रहता तो शायद वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि अरुणिमा इस वक्त प्रेग्नेंट है। रात के वक्त अरुणिमा सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अभी एक ही महीना हुआ था प्रेग्नेंसी का, लेकिन उसकी मिचली अभी से ही शुरू हो गई थी। अभी से ही वो दाल और किसी भी सब्जी के स्मेल से उल्टी करने लगती थी। आस्तिक रात के वक्त अपने कमरे में आता है, लेकिन अरुणिमा को जागता हुआ देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो अरुणिमा पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हें इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए, जानती हो ना।